أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى قوة عظيم. ما شاء الله. ویسے تو یہ درس قرآنی ہے، تفسیر قرآن کا درس ہے اور الحمد للہ تلاوت بھی ماشاء اللہ بہترین آیا، اور یہ ان آیات کی تلاوت جو سورہ مومنین کی ہے ایک یاد دہانی ہوئی مجھے کہ جب ہم مدینہ مشرف ہوئے تھے تو الحمد للہ آپ لوگ بھی گئے ہوں گے اور اللہ نصیب کرے جو رہ گئے ان کو بھی جو گئے ہیں وہ آئے، تو وہ مشرق بلال کے پیچھے آ رہے آخری نماز پڑھا کر سو رہے مہادے تھے، تو وہاں گیا مرحوم علی رضا فلاقانی صاحب لے کے گئے مجھے، تو آئے آمین کے بارے میں تو آپ سنے ہیں نا سارے کرامات سب سے، تو میں نے ان سے عرض کی نصیحت کر رہے، تو ان کا جملہ یہ تھا علی کا بال قرآن قرآن پڑھا، تو اس کے حال میں قرآن قرآن ہی پڑھ رہے تھے، یعنی مجھے نصیحت کر رہے، میں نے کہا تھا مجھے نصیحت کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا علی کا بال قرآن وہ مخلوق بن العبر والنصائح، اگر آپ کو عبرت کی باتیں چاہیے تو بھی قرآن، نصیحت کی باتیں چاہیے تو بھی قرآن، یہ کہنے کے بعد انہوں نے اس ان آیات کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتق المؤمنون الذین فی صلاتهم حافظون، اسی طرح سے امانات کی امانت مراعون لخروجهم حافظون، یہ پڑھتے ہوئے وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، اب یقین کیجیے ایک عامل ہے عالم کی زبان سے، ہر یہ آیتیں زبانی یاد کسی اور ہمیں ہم پڑھتے رہتے لیکن ایک عالم کی زبان سے واقعی اتنا اثر ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ واقعا میرے ہی لیے ہیں، تو اس لیے قرآن کا وجہ سے چلے، تو ابھی ہمارا موضوع کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے ہمارا موضوع، دعائیں مکار اور اخلاق، پہلے تبرکن دو جملے اس کے بعد قرآن بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ کے پاس عربی ہے تو کیا لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں، عربی بھی آپ کے پاس
جی جی جی
بسم اللہ الرحمن، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے مکار اور اخلاق و بردی وفات، اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أفضل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وعملي إلى أحسن الأعمال، هي نا آپ کے پاس یہی ہے چلے، تو ظاہر کی دعا تو نہیں ہے اس کی وضاحت ہے، تو سب سے پہلے یہ بتایا کہ مکارم، یہ بتاؤ آپ کو سب یہ لفظ کرم سے، لفظ کرم کے بہت سارے معنی ہیں اور ان میں سے ترجمہ کریں گے بلند، بلند اعلیٰ، خدا کے بارے میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کریم، نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نبی کریم، قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم، وسیع معنی رکھتا ہے، تو ہم فی الحال ان موضوعات نہیں جاتے ہیں، کرم مکارم یعنی بلند، ٹھیک ہے، اخلاق کس کی جمع ہے، خلق کی جمع ہے اصل میں، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خلق کی تعریف کیا ہے، خلق کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے ابھی تک کیا تھا، مطلب کسے کہتے ہیں خلق،
رویہ
جی
رویہ
اچھا، ہمارا مختصر یہ ہے ایک خلق ہے، خلق ہے یہ جیسے ہمارا چہرہ ہے یہ وغیرہ یہ سب کے ساتھ کیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کے ساتھ خلق ہے، یہ ظاہری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب کے ساتھ خلق ہے، جو اندر موجود ہے جسے ہمیں پیدا کرنا پڑتا ہے، جس سے وابستہ رہنا پڑتا ہے پریکٹس کرنے کے بعد، پھر بعد میں جا کے جو صفت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس صفت باطنی کو کیا کہا جاتا ہے خلق، کا تو تھوڑا سا واضح ہو گیا نا، خلق ظاہری ہے اور خلق جو ہے وہ باطنی، تو ابھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صحیح انسان کون ہے، ताकि इंसान को भी एक ही दफा दे दे, ताकि इंसान वो है जो इतना दे दे इतना दे दे और अभी देना पड़े तो उसके लिए देने में कोई दुश्वारी ना हो। ये हो, ये क्या है? अखलाक। शुजा इंसान वो नहीं है जो एक जगह जग गए और बहुत बड़े जो है कारनामा कर गया है। शुजात यानी वो है कि इंसान इस शुजात की सिफत को इस तरीके से परवान चढ़ाए, इतना ज्यादा बुलंद करे कि अभी भी किसी खतरनाक मौके पर जाने के लिए उसको कहा जाए तो उसको सोचना ना पड़े, जोर देना ना पड़े। इसको कहा जाता है खुल्क। अगर एक आदमी एक शेर पढ़ता है तो शायर नहीं बनता है, शायर वो बनता है कि जो शेर पढ़ने का मलका उसको हासिल हो, प्रैक्टिस हासिल हो। क्या इसको बिल्कुल ही शॉर्ट मुख्तसर बयान करना चाहूँ तो वो ये है कि हम जो है कभी नफ्स अम्मारा गालिबा के गुनाह कर लेते हैं और कभी हम जोर दे के नेकी अंजाम देते हैं। ये फर्क नहीं है कि जब हम इन दोनों जोर से ख्वाहिशात का जोर और इसी तरीके से अकल का जोर, इन दोनों से जब हम आज़ाद होते हैं तो ये हमारी सुई कहाँ जाकर रुक जाती है, वो फर्क है। आपने देखा होगा एक आमतौर पर ये जो घड़ी है, जो सुई वाली घड़ी है, जब वो खराब हो जाती है या हमारे जो है तो फिर जाके दाखिल में जब खराब हो जाता है तो बंद पर जाके वो जाके रुक जाती है। इसी तरीके से जब हम हमें जोर देना ना पड़े और जोर दिए बगैर जो हमारी जो है वो तबीयत कहीं एक ऐसी जगह पर जाकर रुके तो फिर वो हमारी असल है, वो हमारा असल वो है। जोर देके जबरदस्ती करके जो करते हैं वो नहीं है, वो तो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस है कि आम हालत के अंदर हम क्या करते हैं, आम हालत के अंदर हमारे अंदर क्या सिफत है। एक दफा गुस्से को पीने से वो काजिब नहीं होता है, गुस्से को इतना पी ले इतना पी ले, अब गुस्से को पीना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह भी थोड़ा सा वाजे हो गया। इसी का नाम अखलाक, क्योंकि जो है तो सिफात ज्यादा है इस वजह से इसका नाम अखलाक है। जितना और उस मौजू के लिहाज से आप देखेंगे तो इतना अहम है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस लफ्ज से याद किया है वो है खुल्क अज़ीम। इन्ना कल आला आप अख़लाक़े अज़ीम बताए तो अपन नजर लगाते हैं कि हमारा नबी कितना अजीम होगा कि जो अजमत का खालिक है वो कह दे कि आपको खुल्क अज़ीम है। यानी जिसने कहा है कि आपके अख़लाक़ बहुत अजीम है वो हमारी तरह नहीं, और जिसने कहा है कि आपका अखलाक अखलाक अजीम है वो कहता है जो अजमत का खालिक, जो बुलंदी का खालिक है वो अजमत का खालिक है, खुद अजीम है। वो जब कहते हैं कि इन्ना कल आला खुल्क अजीम, इसका मतलब है कि हमारा नबी बहुत ज्यादा अखलाक अजीम है। अच्छा, फिर उसके बाद खुद रसूल की हदीस तो शायद सबको याद है, वो यकीन याद है, वो इस टू यूता बीमा मकार अखलाक, मुझे भेजा गया है क्या किस मकसद के लिए, वही लफ्ज जो है यहाँ पर मकार अखलाक, यानी अखलाक की बुलंदियों तक इंसान को ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। या दूसरा अल्फाज में या तीसरा अल्फाज समझे, अखलाक दर हकीकत जैसे कि आप बैंक के अंदर जाए, आप किसी जगह में जाए तो चंद अरसे के लिए आप उसको तरबियत देते हैं, उसको बताते हैं कि आप जब बैठेंगे तो किस तरीके से बैठेंगे। आपने अंदाजा क्या होगा जब आप बैंक के अंदर जाते हैं वो कभी भी आपका चेहरा इधर उधर देखेंगे, देखते नहीं, आप इस तरह देखते रहेंगे तो काम होगा ही नहीं। कुछ पहले से बता दिया जाता है कि आप सिर्फ टेबल पर हाथ निगाह रखनी है, आप इधर उधर ज्यादा नहीं करनी। हर एक आदमी के अंदर कोई आदत है, कोई तरबियत पहले दी जाती है, प्रैक्टिस। हाँ, इसी तरीके से हमें इस दुनिया के अंदर भेजा गया है जन्नत में रहने का जो है वो कि उनकी आदत हासिल करें। यहाँ से वहां जाने के बाद पहले की तरह दोबारा जन्नत में जाने का इस्तेला फूल ना तोड़े, अदब सीख ले। ये अदब ये अखलाक दर हकीकत उसके लिए तैयारी है जिसका नाम जन्नत है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये सलाम करना, एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की जो है वो इज्जत करना, एहतराम करना, सब जन्नत हुआ था। और इसी तरीके से मना किया गया है किसी की तोहीन ना करो, गाली ना दो, बुरा भला, क्योंकि वही जहन्नम पर। दुरुस्त है। एक शख्स जिसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल हुआ तो बाद में आए, उसने पूछा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हिसाब किताब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, कहा एक छोटी जहन्नम के अंदर मौजूद था, उठा के बड़े जहन्नम में डाल दिया। और अगर हम या हमारा घर अगर अखलाक वाला घर हो, एहतराम वाला घर हो, एक दूसरे की इज्जत वाला घर हो, तो इससे बिल्कुल मुकाबला होगा। उस वो अखबार में आएगा तो कहेगा कि ये छोटी जन्नत में थे हम, बड़ी जन्नत में क्या वगैरह उनका फिर हो गया। और हदीस के साथ पढ़ने का सवाब तो है, लेकिन असल तो ये है कि बाप आए कहा सलाम अली किया बाप इमाम बहुत वाले के सलाम, कुछ देर के बाद बेटा आया कहा सलाम अली किया उम्मा, दूसरा बेटा आया कहा सलाम अली किया उम्मा, उधर मान क्या वाले का सलाम या वाले जी वजह आपको कहता ही नहीं, वो समरा था सलाम के उधर ये चल जाए। और उसके बाद रसूल के पास गए, उनको सलाम किया, इजाजत भी दाखिल हुए, फिर वो आ गए जिसका नाम शोहर है, आके ये क्या है या ये क्या है कहने के बजाय क्या था, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, फखुद वालेका सलाम या अबा हसन व या अमीर अल मोमिनीन। ये अखलाक के नमूने हैं। ये बताने के लिए हदीस की किताब वाले सब फहरिस्त ये है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अखलाक का माना बता रहा था, अखलाक का माना ये है कि बच्चे को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप माँ को सलाम करें, वो सीखा हुआ है, और नाना को सलाम करें, इजाजत लेके दाखिल हो जाए, ये पूछने की जरूरत नहीं है। मुख्तसरन ये है कि ये सिखा कितनी कसरत से करे, ये हमारे अमल से दिल का हिस्सा बने, क्या जहन का हिस्सा बने, जहन से दिल का हिस्सा बने, दिल के बाद रूह का हिस्सा बने, और जब ये हमारी रूह का जब हिस्सा बने तो फिर मरते वक्त हमारे अकल काम ना भी करे तो कोई हरज नहीं, हमारी रूह का हिस्सा सलाम करना बिस्मिल्लाह पढ़ना सब ये हमारी रूह का हिस्सा बन गया है, क्योंकि वो खुद ही चलता रहेगा। तो फिर ये जो अखलाक का जो फायदा है वो यहीं से शुरू हो जाएगा कि बस फलो अखलाक किसे कहा फलास अखलाक ये है कि वो सिफत बात नहीं है जिसे तरबियत देकर, इसे परवान चढ़ाकर, इसे जो है वो क्या नाम है प्रैक्टिस देकर वो हमारी रूह का हिस्सा बने, तो ये जो है वो अखलाक का मान लिया। आते हैं दुआ के तरीके का, तो हमारा जो है हमारी दुआ रह जाएगी जिसने हम दुआ करा पाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा, ये भी बता दूं अल्लाहुम्मा ये क्या है, अल्लाहुम्मा क्या है, सुन अल्लाहुम्मा का माने क्या है,
सल्लम फयल्लाह
जी अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के कितने माने, तकरीबन 8-9 माने सुन है ना, आपको कौन सा माना याद है अल्लाह का, अल्लाह का
इलाह
इलाह है, क्या माने माबूद, एक माना है 8-9 माने हैं इसके, दुरुस्त है। अल्लाह का एक मानी है कि वो जात जिस पर गौर करे तो इंसान वाले हैरान परेशान हो, जहन कहीं ना पहुंचे, और एक माना वो है कि अल्लाह वो है कि जहां जिसके बगैर कहीं सुकून न मिले, शुरू से जहां पहुंचते इंसान को सुकून हासिल हो जाए, फिर उम्र तो हया भी चीजें सब पीछे रह जाए, ज्यादा जब खालिक मौत हया मेरे पास है, मौत हया कहते हैं ये दुनिया की ये चीज़ें क्या चीज़ें, तो ये दुनिया का हाल मेरे पास है, दुरुस्त है, तो यानी जिससे सुकून मिले, जिससे इत्मीनान मिले इंसान, तो लफ्ज़ है ये अल्लाह है, अल्लाह के अल्लाह। अच्छा ये मालूम के दरों से आपको पता है, एक होता है या अल्लाह, उसी को अरबी के अंदर अल्लाहुम्मा दोनों अरबी है, एक या अल्लाह है तुमसे ही है, एक अल्लाहुम्मा है, लेकिन एक ये भी अखलाक कैसा है, वो सोचता है ये अल्लाह सही तो है, लेकिन ये लफ्ज अल्लाह से पहले यह आ गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि खुदा अव्वल से है आखिर आखिर तक है, अव्वल में आकर खुदा भी बोला, لہذا خلق کے اندر ہر چیز میں تو خدا افضل ہے ہی ہے. یہ میں جب یا اللہ بولوں گا تو یہ لفظ اللہ سے یا پہلے آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. پھر کہتے کوئی بات نہیں، آپ یا ہٹا دیں اس کو جگہ پہ آخر میں کیا لگا دیں، بے میں مشدد لگا دیں، تو وہی جو ہم یا اللہ کہتے ہیں وہی بدل کے کیا بنتا ہے اللہ علیہ وسلم. تو یہ لفظ بھی ان شاء اللہ بہت بہتر. اللہم صلی علی محمد و آلہ. خدا یا رحمت نازل فرما محمد کو پر اس کی آپ کو پر. ایک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے آگے کیا لکھا ہوا ہے، وبلغ ایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک بلند کر دے، یعنی ایمان کو کامل ترین ایمان بنا دے. درست ہے؟ اور دوسرا لفظ کون سا ہے تاکہ وضاحت کرنا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے، وجعل یقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو بہترین یقین کا درجہ عطا کر. ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے درجات کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرے، یہی ایمان کا پہلا درجہ ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کر لیا، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور اگر اقرار کرنے کے علاوہ آپ نے دل سے تصدیق بھی کر لی، یعنی زبان سے اقرار بھی کیا، اقرار کرنے سے اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کا خون محترم ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے، ذریعہ حلال ہو جاتا ہے، زبان سے اقرار کر کے. تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے جو ہے وہ اقرار کرے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، دل سے تصدیق بھی کریں، زبان سے اقرار بھی کریں، دل سے تصدیق بھی کریں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تصدیق کرنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں سے اپنا پہنچ جائے. پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اس سے بھی کامل ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ انسان حرام سے تو بچتا ہے، گناہوں سے تو بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، بعض مباحات اور شبہات سے بھی اس لیے بچتا ہے کہ تاکہ کوئی حرام کے لیے مقدمہ نہ بچے. پھر صحابی، ایک صحابی جو ہے پوچھتے امام صحابی سے کیا ایمان کے درجات ہیں، فرمایا بہت درجات ہیں. ایمان کے درجات ہر ایک کا ایمان کا لیول ایک دوسرے سے قریب ہے. اس کے بعد حدیث سمجھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ فلان فلان یہ عمل انجام نہ دے تو کہتے ہیں مومن نہیں، اور فلان عمل انجام نہیں دیا تو نماز نہیں پڑھا تو یہ مومن نہیں ہے. اس طرح کے حدیث ہیں. در حقیقت مومن نہیں ہے کہ ایمان سے اسلام سے خارج کیوں ہوا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فرض کریں 10 منزلہ عمارت ہے، آپ 10ویں منزل پہ جا کے بولے کہ فلاں یہاں رہتا ہے تو کہتے ہو یہاں نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بٹی میں نہیں رہتا، یہ ہماری 10 منزل پہ ہم ہیں وہاں نہیں رہتے. اور ان ایمان کے درجات کے اندر اتنا فاصلہ ہے، یہ آپ نے یقینا علماء سے سنا ہوگا کہ جناب ہے اب آزاد ایمان کے کچھ درجے میں بھائی سے نہ ہو وہ جناب سلمان 10 ٹھیک سلمان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اگر اب اگر سلمان کے مرتبے کو دیکھے تو کافی روپے تھے، اتنا وہ اسکول کے لیے بھی سمجھنا مشکل درجات ہے. تو سب سے پہلی جو دعا ہے، بلغ ایمانی اکمل ایمان، اے پروردگار میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، وجعل یقینی افضل یقین، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے، پسندیدہ یقین قرار دے دے، بہترین یقین قرار دے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یقین میں اور علم، اچھا علم کسے کہتے ہیں اور یقین کسے کہتے ہیں، تو وضاحت میں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ علم اور یقین میں کیا فاصلہ ہے، آپ کیا بتائیں گے؟
علم جاننا ہے اور یقین اس منزل تک جاننا ہے کہ اس کو کوئی شک نہ رہے.
علم میں بھی یہی مرادہ ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے کبھی سے مختصر ہی ہے جہاں پٹیک کا میں جلدی بتاتا ہوں، ایک فرق بتاتا ہوں، وہ یہ ہے علم اور یقین میں فائدے ہیں. جیسے آپ کو، آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو علم ہے کہ یہ دوائی لینی چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، علم ہے نا. لیکن یہ احتمال موجود ہے کہ ایک آگے جا کے یہ جو میں نے کہا ہے وہ قانون ٹوٹ جائے. علم یہ ہے کہ صرف معلومات کے بارے میں جانتا ہے، मालूम के बारे में जानता है कि जिस चीज़ का एलुम है वो उसके बारे में जानता है, तो वो एलुम है। यकीन ये है कि ये है और इसके खिलाफ है ही नहीं है सर, मालूम के बारे में एलुम है और इसका कोई मद मुकाबिल नहीं है, बस खत्म, ये आखिरी है, इसके बला दूसरा हो ही नहीं सकता सर। तो ये क्या होता है? यकीन होता है। यकीन चीज के बारे में एलुम हासिल होना एलुम है, चीज के बारे में एलुम भी हो और इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, अदा में खिलाफ इसके मुकाबले में मद मुकाबले में कोई है ही नहीं, ये क्या है? यकीन। और यकीन के दर्जात है, पहला दर्जा वही एलुम वाला है, एलुम यकीन। दूसरा क्या है? तीसरा दूर से हमें धुआं नजर आए तो हमें यकीन होता है कि वहां आग है, ये क्या है? आसार से पता चल जाता है, पांव के निशानात मिले तो पता चल जाता है यहाँ से लोग घुस रहे हैं, ये या कमरे के अंदर जो है वो रोशनी आ गई, पता सुना निकल गया। तो इसके बाद फिर तरतीब में थोड़ा फर्क है, मेरे जहन में है वो कुछ और है, जो उसको निकालो कुछ और है, आपको साथ में लिखा है नहीं सही, और हिंदी भी किसी को उसका पढ़ के बता दो। दूसरा ये है कि नहीं आसान नहीं है, हम अपनी आंखों से आपको देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी आंख से आपको देखना, ये क्या है? आपको यहाँ इसमें लिखा है आपको शाम में भी है तो काफी कुछ खतरा हो सकती है। तो खुलासा आसार को देख के यकीन हासिल होना है, इल्मुल यकीन खुद अपनी आंखों से देखना, हक़ उल यकीन मतलब अल्फाज हैं, हक़ उल यकीन। अच्छा पहले मैं ये बता दूँ है ना, एक है होता है, एक हक होता है, एक सच होता है, दोनों क्या फर्क होता है? आप सारे का मालूम नहीं होगा, एक सच है एक हक है, फर्क क्या है?
सच जो जितना मैं जानता हूँ सच है, और हक जो हकीकत में सच है।
चल मैं मिसाल देता हूँ, शहर से वादे हो गए शायद आप सही कह रहे होंगे, बाहर बारिश हो रही है ना, तो मैंने कहा बारिश हो रही है, तो मेरा कहना
सच,
मेरा कहना उसके बराबर है, इसलिए क्या हो गया ये सच है, सच इधर है, फिर वहाँ जो बारिश हो रही है वो हक है, यानी उधर से देखेंगे दो हक है, यहाँ से देखेंगे तो सच है, यानी मेरा कहना उस वाकई के बराबर है, लिहाजा सच है, और वाकई मेरे कहने के मुताबिक आखिर के मुताबिक तो आप जाहिर है कि जब आपने आपको जो है अपनी आंख से आपने देख लिया तो फिर आपको सच भी है, सिद्ध भी है और हक भी है। हक जो है वो आप किसे कहते हैं? हक जो रद्द बदलना हो, मिसाल के तौर पर दूर से पहाड़ के ऊपर आपको कुछ नजर आया, जो ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है, बस आपको यकीन हासिल हो गया, आपको यकीन हासिल हो गया क्या कोई इंसान है, हैं? आप असल निकाल लेते हैं कोई इंसान है, और वहां वाले जानते हैं कि वो इंसान नहीं है वो बंदर है, तो आपका यकीन भी जाके उस बंदर को इंसान नहीं बना सकते, वहां हक है, हाँ वो खलीफा नहीं है तो खलीफा नहीं है, जब जमा हो जाए तो क्या है? हाथ बदलता नहीं होगा, कोई माने हक हक रहता है, कोई माने या ना माने, जो हक नहीं है वो कभी हक अकेले से हक बदलता नहीं, हक अकेले से हक। तो खासे कलाम दूर से आसार देखना ये इल्मुल यकीन है, और आंखों से देखना ये हक को यकीन है, फिर लोहे की तरह आपके अंदर कूद जाकर खुद ही आपका हिस्सा बन जाना, यही आपको कुरान के अंदर जो तफसीर कुरान है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलहाकुम तकासुर अत्ता ज़ुरतुम मबाद कल्ला सौफ तअलमून, ये बोले कल्ला सौफ तअलमून, सुन्मा कल्ला सौफ तअलमून, जब आगे बढ़ जाएंगे और पता चलेगा, उसके बाद क्या है? कल्ला लतरउन जहीम, ये नहीं बोले वो क्या बना हक बोले लतरउन जहीम सुन्मा लतरउन हा ऐन जहीम,
तो जहन्नम क्या कहते हैं उसे? अभी जो पूरी अरबी आपने सूरत पढ़ी है,
सूरत ये कहता ना कि अल्लाह को मुतकासो तुम्हें मसरूर रखा है कसरत में, कोई पढ़ने में लगे हुए और डिग्री लेनी और डिग्री लेनी, एक माल में ना हुआ और जमा कर लो और जमा कर लो, इख्तदार में और हुकूमत चाहिए और हुकूमत चाहिए, ये कसरत के शौक में तुम डूबे हुए हो, हत्ता जोर तुम मकाबे यहाँ तक कि तुम खबर हो। फिर कुरान कहता है कल्ला अल्लाह सौ बता लूँ, जब अबू में पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि धोखा बहुत बड़ा धोखा हो गया, अब ये है फायदा भी नहीं देगा, अब इसके बाद जितना इलम होगा नदामत में इजाफा होगा, अफसोस में इजाफा होगा, मसले को हल करने वाले लोग नहीं होगा। कल्ला सौ बता लूँ अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, सुन कल्ला सौ बता लूँ आगे और जाएंगे बर्दा हो जाएंगे और पता चलेगा और पता चलेगा और पता चलेगा, जो इलम यकीन है यानी तो आसार है, अभी तो जहन्नम की आज की जो है हरारत का एहसास हो रहा है, आवाज़ें सुन रहे हैं आप ये है, उसके बाद यकीन, उसके बाद जहन्नम की आप अपनी आँख से देखेंगे, यकीन, उसके बाद तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, और जहन्नम में डालने के बाद जहन्नम में डालने के बाद पूछा जाएगा कि हमने ये नेमतें दी तुमने क्या कर, वो नियमतें अगर जी छोटी नियमतें भी हो तब भी मुश्किल होगा, क्या नाम दी तुमने क्या कर दिया, हमने तुम्हें शोहरत दी तुमने क्या कर दिया, हमने तुम्हें मकाम दिया तुमने क्या कर दिया, हमने इमामत जैसी नियमत दी तुमने इसके साथ क्या किया, अब ये जहन्नम का अदाब अपनी जगह पर, जहन्नम का अदाब अपनी जगह पर, ये सवाल जिसका जवाब उसको याद नहीं ये खुद एक अदाब, फिर हम अपने वही तरफ आते हैं जो अखलाक फासला है, जो खुल्क जिसका अच्छा बना कर रखा है वो तो चाहेगा और पूछे ताकि मेरा मतलब और बढ़े मेरा पास जवाब दे, इसी ज्ञान की तरह ज्ञान की तैयारी है, तो कहते और पूछे ताकि मेरे कागजात का अंदाजा हो जाए, तो जन्नत वालों का सवाल भी नियमत है, जवाब तैयार है, वो जन्नत वालों के बारे में जो है वो आजाद तो आजाद ही है, वो सवाल भी हो गया है आजाद है। तो खुलासा कलाम यह है कि इंसान को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से जिस चीज़ का सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम के अखलाक के अंदर जिस चीज़ का तकाजा किया है वही ईमान और यकीन, ये दो बहुत बड़ी नेमत है, और जो है मरने के बाद ईमान ही काम आएगा, इस्लाम तो सिर्फ मरने तक है, आपको पता है मुसलमान इस्लाम तो हमको मरने तक है, ईमान का जो है दायरा जो है वो मरने के बाद भी शामिल है, तो वो आगे तक उसे जाना है, चाहे दो तारे पढ़ लेते हैं, बल्कि ईमान ही अकबर ईमान, मेरे ईमान को कामिल कर ईमान के हद तक पहुंचा दें, वजह यकीन अफजल यकीन, और मेरे यकीन को जी बेहतरीन यकीन का दर्जा अदा फरमाए, अभी क्या लिखा हुआ है वन तहदीन यकीन इला अहसनिन नियात, मेरी नियत को क्या बना दें पसंदीदा तरीन नियत बना दें, वो अमल हुआ कि अमल ही सैला सरल आमाल, और मेरे आमाल को बेहतरीन बना दें। नियत रूह के माना में, अमल हमारे जिस्म के माना में, और शुजात चूंकि रूह की सिफत है, शुजात जिस्म के अंदर नहीं होती है, शुजात रूह के अंदर होती है, इंसान की रूह के अंदर जितनी शुजात होगी और जिस उसी लिहाज क्या है कदमा बन जाते, तो ये हमारा जो है अमल जो है वो एक बदन की तरह है, एक बदन है मुजस्मा है जिसम है, ये उसके अंदर कुव्वत परवाज किससे है नियत से है, नियत जितनी खालिस होगी वो अमल कितना है इतना ही ज़्यादा बुलंद होगा, ये हदीस का क्या था इनमल अमालु नियत के ऊपर, और एक हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ, ये 50 साल गुनाह करता है जहन्नम में हमेशा रहेगा, वो सिर्फ 40 साल इबादत करके गए वहाँ से जन्नत में रहेगा, ये हमेशा हमेशा जन्नत में हमेशा जहन्नम में, ये हमेशा को हमेशा बनाने वाला कौन है, ये इंसान की नियत है, जिसने 50 साल नेकी का काम अंजाम दिया लेकिन उसकी नियत क्या है कि अगर मुझे 50 साल के बजाय 50,000 साल मिलेगा तो मैं इबादत करूंगा, ये नियत उसको हमेशा के लिए क्या बनाती है, जन्नत में बनाती है। और दूसरा आदमी हो सकता है बालिग होने के बाद सिर्फ 10 साल जिंदा रहा, गुनाह करने का मौका नहीं मिला है, उसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसने 10 साल से ज्यादा गुनाह नहीं किया है, लिहाजा सजा तक मिलेगी नहीं। नियत के ऊपर है कि तुमने जो रास्ता इंतखाब किया है उसके अंदर क्या है, अभी 10 साल है, अगर 10,000 साल में तुम्हें मिलता तो तुम गुनाह कर रहे होते तो ये हमेशा जन्नती और हमेशा जहन्नमी का बन सका भी तरह देखा कि हमारी नियत। और दुनिया के अंदर भी दर्जा है कि मैं कुछ वाकत ध्यान में रख के बता रहा हूँ, नाम ये हो रहा है, एक आदमी हॉस्पिटल बनाता है ताकि कमाए, हालात बदलते हो धोखा ना हो तो सही है, ये नियत। दूसरा आदमी आता है कि मैं हॉस्टल बनाता हूँ ताकि लोगों को फायदा पहुंचे, ये क्या है, मुझसे बेहतर नियत। तीसरा आदमी आके ये नियत करता है कि मैं फायदा नहीं पहुंचाऊं बल्कि इसलिए करता हूँ ताकि कोई नामहरम किसी नामहरम को हाथ ना लगाए, खवातीन का है तो सबके सब खवातीन हो, जेंट्स है तो सबके सब जेंट्स हो, यानी फायदा पहुंचाने के अलावा हलाल और हराम और शरीयत का भी ख्याल रखा। तो देखा आपने दर्जात है, दर्जात है, और इन दर्जात की वजह से जो है वो ये सब का सब क्या है, नियत, नियत। उसी लिहाज से इंसान को क्या मिलता है, सवाब और आज सवाब मिलता है, और हमारा जो आज सवाब किस लिहाज से है, नियत के हवाले से। नियत जो है जितने जितने खालिश होगी उसी लिहाज से उसके अंदर कुव्वत परवाज है, और उसी लिहाज से आपने सुना होगा कि जब खालिश शबाब को सजदा करते हैं तो 7 हिजाब हट जाता है, उसकी तफसीर एक बहुत पुरानी हदीस है, उसके अंदर जो जैसे कि हम जब यहाँ जाते हैं तो सामान एक मशीन में डालते हैं, दूसरे मशीन में डालते हैं, तीसरी मशीन में डालते हैं, इस तरह से जब हमारा अमल यहाँ से जाता है तो पहले आसमान पे चेक होता है जिसके अंदर कोई हसद का जरासीम तो नहीं, पता चला नहीं है तो ऊपर चला जाता है, इसमें तकब्बुर तो नहीं है। इसी तरीके से ये जो है वो क्या होता चला जाता है, स्केल होता चला जाता है, इसके अंदर जो है वो इसके अंदर तहकीकात होती है तो बहुत जाके खुदा की बात मिलती है, खुदा ही फरमाता है इसमें ऐसा ऐसी कमजोरी भी है जो तुम नहीं पकड़ सके, मैं पकड़ तो खुलासा कलाम नियत के बारे में कौन नहीं जानता है कि नियत की बहुत बड़ी अहमियत है। तो हमारी नियत को पसंदी तरीन नियत का दर्जा दे दे और हमारे आमाल को बेहतरीन आमाल के पाए तक बुलंद कर दे तो हमारा अमल जो है इतना अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि हमारी नियत जो है बहुत अहमियत रखती है, तो हमारी नियत जो है वो सही होनी चाहिए, नियत के बारे में इंसान को बड़ा एहसास होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार इस तरह में अरे क्या लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा वफ़िर लियुत्फिका नियती वसहह बिमा इंदका यकीनी, वही बात है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा है, अपनी रहमत से मेरे यकीन को उसवार बना दे, अपने कुदरत से मेरी खराबियों की क्या करें इसलाह फरमा दे, वसहह बिमा इंदका यकीनी वसहह बिकुदरत कमा मा फसदा मिन्नी, जो मेरे अंदर जो कमजोरी है, मेरे अंदर जो कमी है, उन खराबियों की क्या करें परवरदिगार को हम क्या करें हमारी इसलाह फरमा दे। अरे वल्लाह اللهم صل على محمد وعلى محمد بقني ما يشغله الاهتمام به واستعملني لما تسألني غدا عن مفتاح جمع ہے مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت کے اندر معنی بننے والی ہے ایسی مصروفیت سے مجھے کیا کر دے بے نیاز کر دے اور دوسرا لفظ کیا ہے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں کل مجھ سے کیا ہونے والا ہے आप इशा की दुआ पढ़े तो उसमें क्या है रिज़्क के बारे में, रिज़्क के बारे में जो दुआ है वो है इशा की टोटली दुआ जो है वो रिज़्क के बारे में, उसके अंदर भी लफ्ज़ मौजूद है कि परवरदिगार मुझे ऐसी जगह जहाँ मेरा रिज़्क नहीं रखा है वहां पे डाल के मुझे जो है वो मेरी इबादत वगैरह के अंदर रिकावट पैदा ना हो जाए, और दुआया वाला उसके अंदर भी बहुत सारी दुआओं के अंदर ये मौजूद है कि उसके अंदर जब परेशानी हो मुश्किल के वक्त दुआ जो इमाम ने तालीम दी उसके अंदर यही जुमला इस पर बदलेगा, किस मुसीबत की वजह से इबादत की अदायगी के अंदर जो है रिकावट बन रही है, लिहाजा इस मुश्किल को हल करना। और ऐसे के मामले के अंदर ये है कि जिस चीज के अंदर मेरा सिर नहीं है उसके अंदर मुझे थका ना दे, फैन्नका गनीयुन अज़ाबी वाना फकीरुन रहमती, इसलिए कि परवरदिगार मुझे अज़ाब देने से के लिए आज तो बेनियाज है और तू जो है फैन्नका गनीयुन अज़ाबी वाना फकीरुन रहमती और मैं तेरी रहमत पर हकीक हूँ, लिहाजा तू मुझे जो है वो रिज़्क़ वासे अता फरमाए। तो खुलासे कलाम यह है कि ऐसी नौकरी ऐसी मसरूफियत जिसमें इंसान के इबादत के लिए रुकावट ना हो ये खुदा की तरफ से नेमत है, और अगर कोई ऐसी मसरूफियत जिससे इंसान की इबादत के अंदर कमी हो और रुकावट बने तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में दुआ की है। और दूसरा यह है कि क़यामत के दिन जिन चीज़ों के बारे में मुझे सवाल किया जाएगा उसको जो है उसी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आगे वह जुड़े जीता है और मेरे अयाम ज़िंदगी को हर अकल के खलकत के अंजाम नहीं के लिए क्या कर दे मकसूद जिस मकसद के लिए तूने ज़मीन के ज़मीन के ऊपर मुझे भेजा है उसी मशगूलियत उसी के अंदर मसरूफ रहने की मुझे क्या दे दे आप तौफीक अता फरमाए। अभी हम क्या है कसम याद आता है आपको फलां वकील ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो फरमाते हैं वो मेरे वकील को रहने दो हम दोनों के बारे में क्यों कहूँ के अंदर भी पूछा जाएगा कि फलाम कैसा है फलाम कैसा है फलाम कैसा है पूछा जाएगा तुम कैसे अभी हम किस तरह जिंदगी गुजारते हैं ऐसा इसलिए इस तरह जिंदगी गुजारते हैं जैसा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला इसलिए भेजा है कि दूसरों की कमजोरियाँ बयान करें और उनको गुनाहगार करें जासूसी भी भेजा है। दूसरा क्या करता है उससे हमको नुकसान होने वाला हमारा जो है हमारा अमल जो है हमें नुकसान देगा दूसरे का अमल नुकसान देने वाला नहीं है। दूसरे रहनुमा उसूल एक इमाम सज्जाद पे है उसके आखिर नजर ये है कि अगर कोई शख्स तुम पर जुल्म भी करे ज्यादती भी करे तो दूसरे को बुरा समझने के बजाय उसके अंदर एक तलाश करने के बजाय अपने अंदर एक तलाश करना अपने अंदर क्या करना एक तलाश करना, इसलिए कि अगर उसके अंदर एक भी है तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तुम्हारा एक तुम्हें नुकसान फिर वो दूसरा जुल्म कर दूसरे को जालिम चलाने के बजाय दूसरे को गलत चलाने के बजाय अपने अंदर गलतियां तलाश करना। और अगर कोई शख्स ही उसूल की जरूरत में रखे अगर कोई शख्स तुम्हारा एहतराम करे तुम्हें सलाम करे तुम्हें इज्जत दे तो ये ना समझना कि तुम साहिब इज्जत है बल्कि ये समझना वो साहिब इज्जत है जिसे तुम इज्जत दे रहे हो। माल वही दे सकता है जो उसके पास माल हो इल्म वही दे सकता है जिसके पास इल्म हो उस तरीके से दूसरे को इज्जत वही देता है जो वो साहिब है इज्जत हो आपको कोई इज्जत दे तो खुद को साहिब इज्जत नहीं समझना बल्कि समझना उसके बारे करना वो साहिब इज्जत है वो एहतराम मोहतराम है जिसे आप क्या कर रहे हैं एहतराम दे रहा है। तो खुदा से कलाम यह है कि इमाम फरमाते हैं कि दुआ करते रहो जिस मकसद के लिए तूने मुझे ज़मीन के ऊपर भेजा है और इसके बारे में क़यामत के दिन से क्या होने वाला है अभी हम क्या करेंगे क्या हम अपने उयूब को तलाश करने के बजाय दूसरे को उयूब तलाश करते रहेंगे क़यामत के दिन पूछे तो खुदा की तस्वीर जवाब नहीं मिलेगा तुम के उयूब को देंगे तो आपको हम आपको तो नहीं भेजा अपने उयूब को सही करने के लिए भेजा था जो शुरू में मैंने बता दिया था अपने उयूब को साफ करके जन्नत में जाने में क्या बना था आपको आयु बना था विष्णु के साथ रहने का आयु अपने आप को बनाना था। ये आगे सुने वह मुस्तफिर अय्याम फी मा खलक करी लहु वअग्निनी वअवसि अलैय फी मज़ीद रिज़्क़ मुझे दूसरों से बेनियाज कर दे मुझे वसअत रिज़्क़ अता फरमाए। अब तो ये रिज़्क़ आम है बेटा रिज़्क़ यानी अकल के लिहाज से भी है फिक्र के लिहाज से भी है ज़हनी मादी हर लिहाज से उनमें से ये रिज़्क़ भी शामिल है जो हम समझते हैं यानी माली लिहाज से किसी का मोहताज होना ये इस्लाम का पसंदीदा शेर नहीं है मजम्मत है तो ऐसी चीज़ नहीं है। और हुज़ूर जो फरमाते हैं आलिमा जो फरमाते हैं कि जिस गुरबत के ऊपर जो वो लोग फ़र्क करते हैं वो ये वाली गुरबत नहीं है वो वाली गुरबत है जो खुदा के सामने खुदा बेनियाज उनके सामने अपना को अली समझना उस पर बाकी तो है ये फ़र जो है हमजाए कुफ्र ये अच्छी चीज़ नहीं है। अहले ईमान के पास सब कुछ होना चाहिए कि हमारा अकीदा है कि ये कायनात किस लिए बनी है अहले बैत के लिए बनी है तो कायनात की बेहतरीन नेमतें अहले बैत के माने वालों के पास होना तो लिहाजा जोहद का माना भी ये नहीं है कि कुछ ना होना जोहद का माना ये नहीं है कि खुद किसी चीज़ का ना होना दूसरे खुद कोई मालिक ना बन जाए, खुद मालिक बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरे तो खुलासा कला की है कि गुस्सा रिज़्क कभी है, रिज़्क के अंदर गुस्सा हो तो फिर क्या कर सकते हैं इंसान लेके, एक तो खुद सुकून से इबादत कर सकते हैं, दूसरा ये कि वो खैरात कर सकते हैं, दूसरा ये है कि वो जब कोई गुनाह सज़त होता है तो कफ़ारा देता है, तो कफ़ारा देने की वजह से गुनाह के अंदर क्या अज़ाब क्या होता है तकलीफ होता है, और मुसाफ रोज़ा वो नहीं कर सकता है तो मुसाफ रोज़े की जगह आटा देने से और दूसरा मुसाफ का सवाल नहीं सकता। खुलासा हज़ारों फायदे हैं और यकीन आप कुरान की तफसीर पढ़े और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे तो कुरान करीम का खुसूस जहाद का जहाँ जिक्र आया है सबसे पहले माल का जिक्र आ जाता है, माल का जिक्र पहले आता है और नफ्स का जिक्र बाद में आता है कि आपके पास माल नहीं है दौलत नहीं है आप कुछ है अगला शैतानी से जब भी मुलाकात होती है असलाम जमाने से हम जिसबाबी में जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है तो उनकी ताकीद यही होती है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो सब अव्वल के डॉक्टर हो, अगर आप वकील हैं तो सब अव्वल के वकील हो, आप जिस शोबे के अंदर मौजूद हैं आप अहमियत के मानने वाले हैं आपको सफ़े अव्वल में होना चाहिए और उनका बोलने का अंदाज पहले अच्छा सा अंदाज है, पहले पूछते हैं कि इसको गुस्सा है फिर उसके बाद उसी लिहाज से जवाब देते हैं, कहते हैं कि अगर अच्छा डॉक्टर इंडिया में है तो फिर आपको इलाज के लिए नहीं जाना पड़े, अच्छा डॉक्टर आप होंगे तो फिर इंडिया वाले इलाज के लिए हाँ। और इसी तरीके से दूसरी मिसाल वही की है, कहते हैं कि अगर आप अच्छी दवाई बना देंगे तो यहाँ की दवाई वहाँ जाएगी, लेकिन आप अच्छी दवाई की बनेंगे तो वहाँ की दवाई यहाँ मिलेगी, इसलिए सब अव्वल में सब अव्वल में रहे और सर अव्वल में किस तरह पूछते हैं वो आप कह सकते हैं, आप मुझसे बेहतर कहते हैं खुलासे काम यह है कि रिज़्क में गुस्सा होना चाहिए और उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए और गुस्सा करें तो खुदा तबारक व तआला की नेमत है और उससे क्या है इंसान बहुत चीज़ें अंजाम दे सकते हैं, मुझे बेनियाज कर दें और उसके उसमें गुस्सा अदा फरमाए, मुझे एहतियात और दूसरे के मोहताज होने से क्या करें मुझे बेनियाज कर दें, महफूज कर दें, किसी के सामने मोहताज होना ये खतरनाक चीज़ है, मोहताजी खतरनाक चीज़ है, मोहताज किसका हो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी कभी मोहताज नहीं, खुसूसन उन अफराद का जो कमज़र्फ है उसमें तरफियत की कमी है उनका तो उनके बारे में तो बिल्कुल ही अल्लाह तबारक व तआला हमेशा पना मांगनी चाहिए कि परवरदिगार ऐसे लोगों के ऊपर जो है मोहताज ना कर दे जिसके अंदर तरफियत की कमी है। आगे क्या लिखा है, वाजिब नहीं लगा वला तुझसे इबादत की बिलौज हुई है, मेरे ख्याल आज यहीं से काफ़ी और लग रहे हैं अच्छा हाँ आप जो कहते हैं वाइजनी वाला तहतरी यानी दिलकी हुई परवरदिगार तू मुझे इज्जत और तौकीर अता फरमाए और साथ साथ गुरूर और तकब्बुर से क्या मुझे इबादत अता इज्जत दुआ तबारक व तआला से मांग रहे दुआ है शहरी की दुआ के अंदर मौजूद है, खुदा ने मुझे अपनी नज़र में खुद को तो बस समझने की तौफीक अता फरमाए लेकिन लोगों की नज़र में भी इज्जत इज्जत भी अल्लाह तबारक व तआला की क्या है इन्नल इज्जत लिल्लाह खुदा की आपको बड़ा समझना अपने आपको बड़ा समझने के बारे में यह हदीस के अंदर आया है तो खुदा फरमाता है हदीस कुर्सी के अंदर कि अपने आपको बड़ा समझना खुदा फरमाता है कि यह मेरा लिबास है अल्लाह तबारक व तआला का लिबास है, जो शख्स तकब्बुर करता है तो खुदा फरमाते हैं वो मेरे मुकाबले में आता है, वो तकब्बुर बहुत खतरनाक है, बल्कि एक वाकई भी सुना था कि आपको बातें हो गुरू करना तो बहुत दूर की बात है, वाकया लिखा हुआ है कम से कम आप वाकया याद रखें, उसके पास बहुत जानवर मालमान मुआशी बहुत है, अच्छा उस जमाने में जानवर माल मवेशी ज़्यादा होने वाला क्या है, खासकर अगर उसके पास पाँच रूम हैं समझो पाँच गाड़ियाँ हैं उनके पास तो गाड़ी वाला तो होती माल मवेशी इतने बहुत सारे जानवर को बयावान और सहरा के अंदर देख के थोड़ा सा गुरूर पैदा हुआ, थोड़ा सा अपने 10 साल के बेटे से कहा कि बेटा इतने माल मवाशियों जानवरों की मौजूदगी में मुझे कौन फकीर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर खुदा ना बुला और खुदा मुझे फकीर करना चाहे तो खुदा को भी 3 साल लगेगा। ऐसे ही तो बच्चे के सामने जैसे कि जुमला अदा किया, कि जुमला अदा होना ही था। पेटेंट कहा तो वो क्या नजर आ रहा था, बादल है लड़की का, तो बादल नहीं था आंधी है। जल्दी से बेटे को उठाया, आंधी से बचने के लिए पत्थर के नीचे छुप गया और एक आंधी आई, बाहर जाके देखा तो पता चला अरे क्या रोल। बेटे से कहा जानवर सब तो मर गए, मैं देखता हूँ कि वो सवारी जिसमें हम सवार होते हैं, अगर वो अगर है तो हम उस पर सवार होकर शहर पे चले जाते। से कहा तो वो सवारी भी मर चुकी। वापिस आते तो सोचा आपके बेटे को ही उठाता हूँ, चलते गाँव की तरफ घर की तरफ जाऊँगा। वापस आ रहा था तो देखा कि एक शेर बेटे के गल का गला दबा के उसको बिगाड़ के ले जा रही है। अल्लाह खतरनाक कि अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह तबारक व तआला का लिबास, अल्लाह तबारक व तआला की लिबास। जो भी गुरूर और तकबर करता है वो मेरे मुकाबले में आता है। और इबादत का मकसद क्या है? गुरूर तोड़ना, तकब्बुर को तोड़ देना। आपको गुरूर किस पर है? आपके हुनर पर है, शुजात पर है। कहा सजदे में इसी को नहीं करना। आपको गुरूर है अपने पांव पर चलने पर, ताकत पर गुरूर है। कहा किसको भी जमीन पर। और सबसे ज्यादा गुरूर क्या है? अपनी अकल पर, अपनी दानिश पर। इसको तो बिल्कुल करें। इस सजदे का मकसद यही है कि क्या है, गुरूर खत्म हो, तकब्बुर है वो खत्म हो। परवरदिगार ये हाथ तो मरकज ताकत है, इसको भी जमीन पर, जो पांव है वो ताकत पर कर वो भी, और पेशानी और अकल जिस पर तो इंसान को नाज है ये तो बिल्कुल हो। इबादत का असल मकसद जो है वो गुरूर को खत्म करना, तकब्बुर खत्म करके क्या दिखाना है? आजिज़ी दिखाना है। इसलिए इस दुआ की खुशियत यह है कि इमाम अलैहि सलाम में वो जो सिफत है बेहतरीन खुल्क, जो बेहतरीन सिफत है, इसको एक तो हद में लफ्ज़ याद रखे, जो बुलंदी की तरफ जाने वाले सिफत को क्या कहते हैं? वो तो आपको पता है फजाइल। और जो बस्ती की तरफ ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फजाइल। बस्ती की तरफ जाने वाले फजाइल, ये दोनों मुमकिन है। जैसे कुरान के बारे में आए से हम बुला है रस्सी है, रस्सी से दोनों काम लिया जाता है। रस्सी को पकड़ के बुलंदी भी जा सकता है, बस्ती के जरिए इंसान बस्ती की तरफ भी जा सकता है। तो खुलासा कलाम आज के दर्स का तो खुलासा कलाम ये होगा, इस दुआ की खसूसियत ये है कि रिज़्क की दुआ है गुरबत और फकीरी से पना, इस तरीके से इज्जत की दुआ है तकब्बुर से पना, और इबादत की दुआ है और इबादत को किसके जरिए इंसान जो है खुद पसंदी के जरिए अपने आप को बेहतर समझ के ज़ाया होने से इन जरासीम खत्म करने वाली तरह। क्योंकि खुदा मुझे इबादत की तौफीक दे दे, खुद पसंदी के जरिए इबादत को फासिद होने से क्या करें महसूस भी रखें। तो आखिर ये वाक्य सुना के अपने धर्मों को तमाम करूँगा। दो शख्स मस्जिद में दाखिल हुए, एक शख्स जो सालहा से आ रहा था मस्जिद के अंदर, दूसरा शख्स जो है पहले वाले। और जो सालहा से आ रहा था उसने देखा उसको जो बिल लगाया है मस्जिद के अंदर, थोड़ा सा गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया, मैं तो इतने साल से मस्जिद में आ रहा हूँ, मुझे आ जाए। और दूसरा जो पहले लगाया था उसने खुदा की बारगाह में सजदा करके कहा परवरदिगार भी दुरुस्त है कि ये आदमी से बेहतर है कि सालहा से आपकी बारगाह में मस्जिद में आता रहा है, और मैं तो फकीर हूँ, मैं तो काका हूँ, गुलाम हूँ, मैं तो टाटा आया हूँ, मैं तो तासीर फताकार हूँ, मैं तो गुनाकार हूँ। उसके दिल में यह ख्याल है, उस नबी के ऊपर अल्लाह तबारक जमाने के नबी के ऊपर अल्लाह तबारक बता रहा हूँ मिला कि दोनों के अमाल नामा अमाल खाली हो चुके हैं। जो सालहा से मस्जिद के अंदर आ रहा था, नेकी अंजाम दे रहा था, अपने आप को उससे बेहतर समझने की वजह से, गुरूर और तकब्बुर की वजह से सारी नेकियां जाया हो गई, और वो दूसरा आदमी अपने आप को कमतर और हकीर और गुनाहगार समझने की वजह से उसका नामा आमाल से तमाम बुराई का पुरुष है। तो खुलासे कलाम यह है कि छोटा सा अमल इंसान की जैसे कि हाँ एक वाकई भी हमारे एक इलाके के अंदर हाँ थोड़ा दीवाना हो गया था, उसने अपने घर को आग लगा दी। बाद में लोग आ गए और शोर चलाना कि आप बिना भी तुम डांटा है तुमने क्या किया है, तो खुदा की कसम खा कर कहता है कि मैंने तो थोड़ी सी आग जला दी थी, बाकी आप लोग शोर शराबा भर कर जलाए। आग तो सबसे पहले छोटी होती है, इस तरीके से नेकी इंसान कभी अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर खुद पसंदी की वजह, अपने आप को बेहतर समझने की वजह से, गुरूर पैदा होने की वजह से, वो सारी नेकी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नाबूद हो जाती है। लिहाजा इबादत की दुआ के साथ साथ और कुरान करीम की आयत आयत जो है उसमें एक जरीन नुकता है, क्या फरमाते हैं, मन जा बिल हसनती, जा फरमाने क्या है, अगर कोई शख्स कोई नेक अमल लेकर कयामत में पहुंच जाए तो उसको फिर इनाम के तौर पर उसको दस गुना दे दिया जाएगा। मसला यह है कि आमाल ने आमाल को अंजाम देना मुश्किल, अगर आमाल दे दिया है अंजाम दे दिया है तो उसकी कबूलियत मुश्किल, अगर कबूल हो भी गया है तो उसकी हिफाजत मुश्किल, उसको क्या है कयामत का क्या रखना बाकी रखना भी मुश्किल काम है। तो याद है मराहिल से गुजर के मन जा आगे झांसा ना दी, एक अच्छा अमल अंजाम भी दिया हो खुदा ने पसंद भी किया हो और ज़ाया होने से बचा के खुदा फरमाता है कि अगर हमारे पास आ जाए तो फिर तो पहला हुआ शुरू नमसा लिया, कम से कम 10 बराबर उसको क्या दिया जाएगा सवाब दे दिया जाएगा। तो दुआए मकर रहला के अंदर दोनों में बीमारी की तरफ भी इशारा है कि ये खूबी है और उसके साथ ही बीमारी आ सकती है, उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह से हमारी दुआ के अंदर दुआ को बता रहा हमें इन तमाम अखलाक हसनात को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और एक गरीब परवरदिगार हम अपनी तरफ से कभी भी हासिल नहीं कर सकते, अपनी अजीम कुदरत के जरिए सिफात हमारे अंदर पैदा फरमाए, हमारे तमाम नामे सामान को इबादत का दर्जा अता फरमाए, और जो अमल हमने अंजाम दिया है उसको दाय होने से उसकी इबादत फरमा, और दुआ थोड़ा करता हूँ परवरदिगार हमारे ईमान को कामिल तरीन ईमान का दर्जा अता फरमा, हमारे यकीन को बेहतरीन यकीन का दर्जा अता फरमा, और हमें उसत रिज़्क़ अता फरमा, और हमें मुख्तारी और फकीर से हमें पनाह अता फरमा, परवरदिगार हमें हर गुनाह तेरी बंदगी और इबादत की हम सबको तौफीक अता फरमा, और गुरूर तकब्बुर से हम सबको पनाह अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।